मेरे प्यारे साथियों, आप सबको डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। आज 14 अगस्त 2015 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की जो फरवरी 2016 में 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन 6 साथियों के नाम हैं नवीन दुबे, आप दिल्ली से हैं, लक्ष्मी देवी लखनऊ से हैं, रितु रानी पानीपत हरियाणा से हैं, गौरव कुमार शर्मा दिल्ली से हैं, सुरेश त्रिपाठी आप भी दिल्ली से हैं और दिल्ली से ही हैं शिप्रा। तो नवीन, लक्ष्मी, रितु रानी, गौरव, सुरेश और शिप्रा, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, खासकर इस बात के लिए मैं अपने सभी क्लासेस में आने वाले स्टूडेंट्स से विशेष रूप से रिक्वेस्ट करूंगा या कह लीजिए कि सलाह देना चाहूंगा कि खासकर अभी मोटिवेशन वाले पार्ट में हम लोग जिस इश्यू को लेकर चल रहे हैं, प्लीज उसकी बिल्कुल भी अनदेखी न करें। अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल न लाएं कि इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जब आईएएस बन जाएंगे हम तब देखा जाएगा। नहीं मित्रों, इसका लेना देना है, क्योंकि यही वह बात है जो आपको आईएएस बनने में मदद करेगी। और खासकर जो आप सब 15 दिन के लिए क्लासेस में आने वाले हैं उसमें आप अधिक से अधिक यहां से लेकर जा सकेंगे। तो मित्रों, आप सभी का एक बार मैं फिर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब कुछ सूचनाएं हैं। पहली बात तो ये कि अभी तक मेरे पास जन्मदिन की आप सबकी शुभकामनाएं मिल रही हैं, उसके थ्रू ईश्वर तक मेरे बारे में आप सबकी दुआएं पहुंच रही हैं, तो उसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस तरह की शुभकामनाएं न केवल मेरे प्रति आपके प्रेम और सम्मान का ही प्रतीक है बल्कि कहीं न कहीं विश्वास का भी प्रतीक है। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जो मेल मेरे पास आए हैं उसमें कभी पिछले लगभग 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ मेल ऐसे हैं जो अक्टूबर के क्लासेस में एडमिशन लेने की बात कह रहे हैं, और उसमें 1-2 मेल तो ऐसे भी थे जिन्हें पढ़कर सच पूछिए तो मेरी थोड़ी सी आंखें भी डबडबा आई, जब उसमें यह लिखा गया कि सर किसी भी तरीके से अक्टूबर के बैच में एडमिशन दे दीजिए और अगर सीट नहीं होगी तो हम फर्श पर बैठकर क्लास अटेंड करने को तैयार हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं ऐसी भावनाओं से रियली में अभिभूत हूं और मैं ऐसी भावनाओं का अभिनंदन करता हूं, पूरी तरह से सम्मान करता हूं, क्योंकि इससे यह दिखाई देता है कि इंपॉर्टेंट कुर्सी टेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट माहौल नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है जो लेना है। कहीं ना कहीं वो उस गहराई को व्यक्त कर रहा है, लेकिन काश मुझे बहुत अच्छा लगता यदि मैं इस तरह की इच्छाओं को पूरा कर पाता, लेकिन अभी ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कि लेने की इतनी तीव्र भावनाओं के बावजूद मैं उन्हें पूरा करने में अपनी कोई भूमिका निभा सकूं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इनफैक्ट फरवरी में ये क्लास नहीं होनी थी, लेकिन जैसे ही हमने अक्टूबर के क्लासेस के लिए एडमिशन बंद किए, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आने लगी, इसे ही मैं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव कहूंगा, नैतिक दबाव कह लीजिए, आने लगा कि नहीं, नेक्स्ट क्लास भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर सकें, और उसी के नतीजे के तौर पर सच पूछिए तो ये फरवरी की क्लास डिक्लेयर की गई है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिनमें भी क्लास अटेंड करने की तीव्र भावनाएं हैं, मित्रों नवंबर मिड में ये क्लासेस खत्म होंगी अक्टूबर वाली और फरवरी में फिर से शुरू हो जाएंगी, ज्यादा वक्त नहीं है, आप एक बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ा काम करने में थोड़ा सा वक्त भी बड़ा लगता है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि उसके लिए थोड़ा सा बड़े तरीके से सोचा भी जाना चाहिए। 4 महीने का वक्त कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा आप उस रूप में न लें कि कोई अगर अक्टूबर की क्लास में नहीं आ पाएंगे कि तो कुछ बहुत बड़ा आप खो देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज मिस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स अब दो तीन बातें और हैं कि आज फ्राइडे है, डेफिनेटली कल शुक्र शनिवार होगा और उसके नेक्स्ट डे संडे होगा, तो सैटरडे और संडे को ये ऑडियो अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन सैटरडे को एज इट इज जैसा कि होता है आपको प्रेस की क्लिपिंग्स पढ़ने को मिलेंगी और साथ ही साथ आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। और जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इस बार के स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के बारे में मैंने एसे के सब्जेक्ट पर कुछ बातचीत आप लोगों से करने का फैसला किया है और मैं उसमें कुछ एसेज के आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा जो पिछले साल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे कि उनमें क्या क्या पॉइंट्स होते हो सकते हैं, कैसे कैसे उन्हें लिखा जा सकता है, कितने कितने तरीके हो सकते हैं। तो मित्रों मैं खासकर ये बात इसलिए पहले से बता रहा हूं कि ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस होगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल ऑडियो गाइडेंस होगा, प्लीज इसे बिल्कुल भी मिस न करें क्योंकि ये पूरे के पूरे आपका जो 250 नंबर का निबंध का पेपर है उसे कवर करेगा। और मैं ये मान करके चलता हूं कि इस पेपर में एटलीस्ट आपको 60% स्कोर करना ही चाहिए और ये कैसे संभव हो सकता है इसी के बारे में हम इस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में आपसे बातचीत करेंगे। मित्रों एक बात और है कि कल 15 अगस्त है, ऑडियो नहीं आएगा, तो मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं को अपनी ओर से और अपने सभी प्रिय श्रोताओं को अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से भी 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हम सब में वो विवेक दे कि हम इस स्वतंत्रता को सही मायने में ट्रांसलेट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, ट्रांसमीट कर सकें, अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए इसे जन जन की चौतरफा स्वतंत्रता में बदल सके। मित्रों तो पहले से ही आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों एक रिक्वेस्ट भी है, एक सलाह भी है, वो ये कि कल प्रधानमंत्री जी जो लाल किले से भाषण देंगे प्लीज उस भाषण को आप जरूर सुने। प्रधानमंत्री का ये जो भाषण होता है लाल किले से देना एक तरह से नेशन को वो एड्रेस करते हैं और स्वाभाविक है कि वो ये बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने अभी तक किया है और क्या उनकी सरकार और आगे करने जा रही है। इससे आपको पता लगेगा कि हमारे राष्ट्र की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, सरकार के दिमाग में अभी क्या चल रही है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको उन बिंदुओं पर जोर देना चाहिए जो सरकार की प्राथमिकताओं में हो, हमारे देश की जरूरत हो, जिसे आप जन आकांक्षाएं कह सकते हैं। तो वो एक तरीके से हमें जनरल स्टडीज का जो एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है जिसके बारे में लोगों को भ्रम होता है कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा, वो भ्रम आपका टूटेगा और एक तरह से एक सीमाएं निर्धारित करने का ये जो भाषण है ये काम करेगी कि आपको किन किन इशू को लेकर के अपनी तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों आप सबको मैं फिर से याद दिलाता हूं कि प्लीज कल प्रधानमंत्री जी के भाषण को आप जरूर सुने और आप ध्यान से सुने, आप एक स्टूडेंट के रूप में सुने और इस रूप में सुने कि प्रधानमंत्री जी आपकी क्लास ले रहे हैं, एक डेढ़ घंटे जितने समय तक वो बोलेंगे उस समय तक की आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और प्लीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उन्हें आप नोट भी कर लें ताकि उन इश्यूज पर हम आगे बातचीत कर सकेंगे। और आप देखेंगे कि यदि आप अभी तक ऑडियो गाइडेंस लगातार सुनते आ रहे हैं, एटलीस्ट एक साल से सुनते आ रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त से 15 अगस्त तक का जो ड्यूरेशन होता है वो एक साल का होता है, तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो बहुत कुछ इस एक साल के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है जिन पर हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत करते रहे हैं लगभग वही पॉइंट कवर होंगे। तो मित्रों क्या यह एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि इससे पहले कि प्रधानमंत्री जी अपना भाषण शुरू करें आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी का भाषण तैयार कर लें? आप करिए तो देखिए कितना मजा आएगा। आप एक पेज लीजिए और उसमें यह लिखने की कोशिश कीजिए, उसको दो भागों में डिवाइड कीजिए, एक तो ये कि सरकार की साल भर की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बातें करेंगे, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरा ये कि सरकार अगले एक साल में या पांच साल में या बीस साल में क्या क्या करने जा रही है, यानी कि उनकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या हो सकती हैं, ये पॉइंट भी आप नोट कर ले। और जनता से वो क्या अपील करेंगे, ये तीसरा पॉइंट है, जनता से वो क्या अपेक्षाएं करते हैं, क्योंकि अगर जनता सरकार से अपेक्षा करती है तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेफिनेटली सरकार भी जनता से कुछ ना कुछ अपेक्षा करती है। तो तीसरा बिंदु ये होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा कि वो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। तो मित्रों बहुत अच्छा ये अभ्यास होगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होगा कि आप इन तीन बिंदुओं पर अपनी तरफ से पॉइंट्स तैयार करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा भाषण लिख लें ऐसे के फॉर्म में, लेकिन पॉइंट तैयार करें। मैं वो तीन बिंदु आपको फिर से स्पष्ट करता हूं। पहला तो ये कि सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है, आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी जरूर इन पर बातें करेंगे क्योंकि वो नेशन को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा, सरकार और क्या क्या करने जा रही है, ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है कि सरकार पब्लिक से क्या अपेक्षा रखती है। इन तीन शीर्षकों पर आप पॉइंट्स तैयार करें और फिर प्रधानमंत्री जी के भाषण से आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक दृष्टि मिलेगी और आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और इसे आप सूचना न माने बल्कि आप इसे हमारे इस हम लोग जो लेक्चर पर बात करते हैं उसी का एक हिस्सा माने और 15 अगस्त की का जो ऑडियो होगा उसी की थोड़ी सी क्षतिपूर्ति के रूप में इसे देखें। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर जो मोटिवेशन वाला पार्ट है और इसमें जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वह है खुद को हल्का कैसे करें। राइट, तो मैंने दोस्तों कल आपसे एक बिंदु पर बात की थी और वो थी कि आप अपने दिमाग में इस बात को गांठ बांध लें कि हमें हर क्षण दूसरों के मदद की जरूरत होती है, चाहे वो सूर्य की रोशनी के फॉर्म में हो या बहती हुई हवा के फॉर्म में ही क्यों ना हो, हमें हमेशा दूसरों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब ये सिद्धांत आपकी चेतना में रच बस जाएगा तब फिर आपको लगेगा, महसूस होगा या आपकी चेतना इस तरीके से काम करने लगेगी, आपके व्यवहार बदलने लगेंगे कि हम ऐसा काम करें जिससे हमें दूसरों की मदद मिल सके और ऐसा काम न करें कि दूसरे हमें मदद देने से इनकार करें। है ना, ये चेतना में एक अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अदृश्य रूप में होने वाला बहुत जबरदस्त और गहरा परिवर्तन है दोस्तों। ऊपरी तौर पर आपको ये चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देंगी लेकिन कुछ समय के बाद आप अनजाने में ही एक बदलाव सा महसूस करने लगेंगे। मित्रों अब मैं सेकेंड पॉइंट पर आता हूं और वो सेकेंड पॉइंट ये है, ये जो बोझ मैं कह रहा हूं हल्का करें, इसका मतलब है कि क्या हम वे ओवरवेट हैं, है ना। जब मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को हल्का करें इसका मतलब है कि हम ओवरवेट हैं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसकी हाइट 5.5 फिट की है, ठीक है, और उसका वेट 65 kg है, 60-65 kg है, तो आप उसे ओवरवेट नहीं कहेंगे ना, उसका वेट ठीक है, जितना होना चाहिए उतना है। लेकिन अगर वो सीधे 90 kg का हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि भैया बहुत ओवरवेट हो गए हो, थोड़ा सा अपने को हल्का करो, अपने वेट को कम करो। मित्रों जब हवा गर्मी के दिनों में इतनी गर्म हवा चलती है तो आप उस गर्म हवा को कभी भी भारी हवा नहीं कहते हैं। भारी हवा कब कहते हैं, अब जब बरसात में जो हवा चल रही है उसे आप कह रहे हैं कि बड़ी बोझिल हवा है, बड़ी भारी हवा है। ये भारी हवा क्यों हो गई, क्योंकि हवा का नेचर है बहना, वो बह रही है लेकिन अब उसमें जो मॉइस्चर हो गया है, जो नमी आ गई है, तो उस नमी ने उस हवा के हल्केपन को भारी बना दिया है और अब वो हवा उतने फ्लो से नहीं बह पा रही है, उतनी मस्ती में झूम नहीं पा रही है और सबसे बड़ी बात है कि उतने ऊपर भी नहीं उठ पा रही है क्योंकि वो भारी हो गई है। यानी कि मतलब ये हुआ मित्रों कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो एक सामान्य स्वभाव है, वो हल्का ही होने का है। वो तो हम किसी न किसी वजह से उसको बोझिल बना देते हैं। हवा का स्वभाव ही बहना है, अब उस नदी के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो वहां से वो मॉइस्चर ले लेती है तो वो भारी हो जाती है। शरीर का कुछ न कुछ वजन तो होना ही चाहिए लेकिन जब वो ज्यादा भोजन करने लगेंगे और शरीर में चर्बी बढ़ने लगेगी, जब एक्सरसाइज कम करेंगे, पता लगा खाए और सोए वाले लाइफ को वो जी रहे हैं, तो शरीर में चर्बी बढ़ने लगेगी और शरीर बोझिल होने लगेगा। मित्र मित्रों, ये सामान्य परिभाषा मैंने आपको बोझिल और हल्का होने के दी। तो याद रखिए कि हर चीज का एक सामान्य स्वरूप है, उसकी सामान्य प्रकृति है। जब तक हम सामान्य प्रकृति के तहत बात करते हैं, काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब तक वो बोझिल नहीं होती। नदी बह रही है, बहती रहे, चाहे उसका घाट कितना भी चौड़ा क्यों ना हो और उसमें कितना भी गहरा पानी क्यों ना हो, लेकिन जब एक्सेस वाटर हो जाएगा तो वो पानी नदी के तटों को पार करके बहने लगेगा और बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो हमें देखना यह है कि ये जो बाढ़ में कन्वर्ट होने वाली जो क्वांटिटी है पानी की, ये कौन सी है, क्या है, इसी को समझना होगा। इसीलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट हाथ में आया है और हम लोग इसे इसी यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो दोस्तों, हवा भारी लगने लगे तो हवा बोझिल है, नदी से जब पानी छलकने लगे तो बाढ़ है, तो पानी में नदी में ज्यादा है। ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए। अब इसको हम ह्यूमन बीइंग पर कैसे लागू करेंगे? देखिए, ह्यूमन बीइंग पर जब हम जिस हल्केपन की बात कर रहे हैं, उसका शरीर के वजन से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि 5.5 फीट के हाइट के आदमी के शरीर का वजन 100 kg हो, लेकिन उसको लोग अपने कंधों पर उठाने को तैयार हो। ऐसा होता है, आपको बहुत ऐसे मिलेंगे जो वाकई में बहुत मोटे हैं, लेकिन उनको लोग इतना प्यार करते हैं, उनको छूने को तरसते रहते हैं, उनको अपने कंधों पर बिठाने के लिए अपने कंधों को आगे करते रहते हैं। तो शरीर, व्यक्ति का जो संबंध है वो शरीर से नहीं है। व्यक्ति का जितना भी संबंध है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसकी चेतना से है, ना उसके शरीर के रंग से है, ना उसके शरीर के बनावट से है, ना उसके शरीर के वजन से है, ना उसके शरीर की लंबाई और चौड़ाई से है, कहीं भी नहीं है। व्यक्ति का जो संबंध होता है, याद रखिए, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसकी चेतना से होता है। चेतना बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं और भी कह सकता था, मैं उसकी व्यवहार की बात कर सकता था, उसके कार्य की बात कर सकता था, उसकी सोच की बात कर सकता था, लेकिन दोस्तों, मैं जानबूझकर यहां चेतना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि चेतना एक ऐसी चीज है कि जो हमारे सोच है, जो हमारे व्यवहार है, जो हमारे काम है, इन सबको कंडक्ट करती है। इन सब की जो लगाम होती है वो हमारी चेतना के हाथ में होती है, क्योंकि चेतना एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे के पूरे इन इश्यू, इन सारी सारी चीजों पर रिश्ता रहता है। जैसे कुएं में आप देखेंगे, पानी खाली हो जाता है, फिर पानी भर जाता है, झांकने की कोशिश कीजिए तो आपको पानी कहीं से आता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन पानी आ जाता है। चेतना ऐसा ही काम करती है, वो सब कुछ, हमारे बात, हमारे व्यवहार, हमारे काम, हमारी सोच में इस तरीके से धीरे धीरे रिश्ता रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये सब चीजें कैसे हो रही हैं और बड़े बेहतर तरीके से हो रही हैं, लेकिन चीजें होती रहती हैं। इसलिए मित्र, मैं बात कर रहा हूं चेतना पर। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर, ये चेतना क्या होती है और विचार क्या होते हैं या मस्तिष्क क्या होती है, इसके बारे में हमको बताइए। मैंने पहले के ऑडियो में, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, इसके बारे में मैंने चर्चा की है, लेकिन यहां वक्त नहीं है मित्रों कि मैं उसके बारे में चर्चा करूं। आगे चलकर हो सकता है कि कभी हम इस पर बात करें, लेकिन फिलहाल मैं वायदा नहीं कर रहा हूं। तो मित्रों, हमारी जब इस चेतना में गड़बड़ी होती है, याद रखिए, तो सारे के सारे इंटरनल फ्लो में गड़बड़ी होने लगती है। इसीलिए जो सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए आदमी को बदलने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, वो होनी चाहिए उसकी चेतना में बदलाव किया जाए, उसके विचार और कामों में बदलाव करके आप कुछ बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते। अब ये बात अलग है कि चेतना में बदलाव करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो मित्रों, जब चेतना में गड़बड़ी होती है, करप्शन होता है, पोल्यूशन होता है, उसका मैकेनिज्म गड़बड़ होता है, तो सच पूछे तो आदमी बोझिल होने लगता है। उसको महसूस होता है, खुद भी महसूस होता है कि यार, मैं बोझिल होने लगा हूं। अब आपको कैसे महसूस होगा कि आप बोझिल होने लगे हैं? क्या उसके कुछ लक्षण हैं? मित्रों, उसके लक्षण हैं, और मैं उनके लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये चीजें जब होने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब आप हल्के से भारी होने लगे हैं और अब आपसे लोग किनारा करने लगेंगे। मित्रों, इसके बारे में मैं आगे चलकर बाद में चर्चा करूंगा, हम लोग मंडे को इसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही मोटिवेशन वाले सेक्शन में। मित्रों, हड़बड़ी मत कीजिएगा, मैं इसको विस्तार से लेना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है और इसने अगर आपको सिविल सर्विस के इंटरव्यू में 200 मार्क्स दिला दिए तो याद रखिए कि फिर आप अगर रिटेन में बहुत आखिरी में भी हैं तो आपको सिलेक्टेड सूची में स्थान मिल जाएगा। कहां मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिल जाएगा। यानी कि ये जो तैयारी हो रही है, ये इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है, ऐसे की भी तैयारी हो रही है और फिर जिंदगी की तैयारी तो हो ही रही है। इसलिए प्लीज इसे आप हल्के में न लें, क्योंकि हम हल्के होने पर बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। बहुत अधिक खबरें न्यूज की नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया और मुझे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बारे में भी आपसे बात करनी थी। कल के न्यूज में आपने सुना कि वही संसद के गतिरोध को लेकर के खबरें हैं और सच पूछे तो अब जो स्थिति आ रही, कल संसद में थोड़ी सी बातचीत भी हुई, आपको मैंने बताया था कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर के परसों थोड़ी सी बातचीत हुई थी। अब तो संसद का सत्र खत्म ही हो गया है लेकिन सरकार ने अभी उसका सत्रावसान नहीं किया है और खासकर सरकार को भरोसा है कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो GST बिल है वो राज्यसभा में है और उसे शायद वो पारित करा लेगी। सरकार के इसे पारित कराना इसलिए जरूरी समझ रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि 2016 का जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, 2016 अप्रैल से जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा तब से वो GST को लागू कर दे। मैं आपको मित्रों ये बता चुका हूं कि किस तरह से सरकार के सामने अभी 3-4 बहुत बड़े एजेंडा हैं। अगर वो सच में आर्थिक विकास को तेज करना चाहती है तो रिपीट कर दे रहा हूं यहां क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सिविल सर्विस के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने भी चाहिए। उसमें है लैंड एक्विजिशन बिल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, लेबर रिफॉर्म जिसमें हम श्रम सुधार की बात करते हैं और चौथा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हैं। मित्रों, आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स में और मैं चाहूंगा कि आप उसे पढ़ें। शुरू का भले ही आप उसे आर्टिकल के हिस्से को छोड़ दें लेकिन बाद के जो उसके 3-4 पैराग्राफ हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें। खासकर ध्यान से पढ़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर कोई एक्सपर्ट नहीं होना है। विधेयक में क्या थे और क्या उसकी हिस्ट्री रही, कांग्रेस ने उसे रखा था और क्या क्या बदलाव हुए और संसदीय सप्रवर समिति को सौंपा गया, सारी हिस्ट्री से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना जो है वो ये है कि भाई वाई GST इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एट प्रेजेंट, कि अभी ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है। इस पर बहुत पहले से बातचीत चल रही है, मैंने पहले भी इस पर बहुत से आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं, बातें भी इस पर खूब हुई हैं। उस आर्टिकल में जो मैं इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर रहा हूं आप देखेंगे कि लास्ट में उन्होंने दो तीन बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। नंबर एक दोस्तों कि भारत को अगर सच में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसे नो डाउट कि एग्रीकल्चर को तो थोड़ा सा बढ़ाना ही होगा, जिसमें हमारे 5-year प्लान में ही 4% की ग्रोथ रेट की बात कही गई है एनुअली, जो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हम सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा सर्विस सेक्टर आप देखिए कि कितना अधिक 50-60% के बीच में पहुंच गया, हम बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें भारत अभी बहुत पीछे है, दूसरे कंट्रीज की तुलना में बहुत पीछे है और हमारा जो GDP टोटल जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो 15-16% है, जबकि ज्यादा होना चाहिए। हमको आजादी के साल 65-68 साल हो गए हैं और मैन्युफैक्चर तो, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। नंबर एक कि उसके लिए हम अपनी कंट्रीज में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उन्हें मैन्युफैक्चर करके एक वैल्यू एडिशन कर देते हैं, मतलब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का एक बेहतर इस्तेमाल करके अपने ही देश के लिए ज्यादा पैसा अर्न करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब हम जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम कपास भेज दें फॉरेन कंट्रीज में या आयरन भेज दें हम फॉरेन कंट्रीज में तो ये रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, लेकिन अगर हम कपास से कपड़ा बनाएं और उस कपड़े को विदेश में भेजें तो बट नेचुरल है कि उससे हमारी अर्निंग बढ़ेगी और कपास को कपड़े में बदलने के लिए फिर आपको रोजगार प्रोवाइड करेंगे, आपको श्रम की जरूरत होगी और वो हमारे देश के लोगों को ही मिलेगा। तो एजेंडे में जो अभी रखा गया है वो है कि कैसे हम इस 16% को 25% में कन्वर्ट करें, मतलब हमको 9% की ग्रोथ चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि तीन चीजें जो अभी हमारे नए प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर की हैं, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही बूस्ट करने वाले हैं। नंबर एक, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग से ही है, मेक का मतलब ही है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। दूसरा, उन्होंने दिया हुआ है स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर आपको दक्ष कौशल युक्त श्रम चाहिए, है ना, इस तरह के लेबर से बात नहीं बनेगी। तो स्किल्ड इंडिया की बात कही गई है, और इसके डिजिटल इंडिया की बात की कही गई है कि क्योंकि जो पूरा का पूरा अब जो कम्युनिकेशन का जो सिनेरियो बन गया है वर्ल्ड में, तो बिना डिजिटलाइज किए हुए हम अब वर्ल्ड लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ज्यादा उसकी बड़ी जरूरत यह होगी कि हम उस मैन्युफैक्चर किए हुए गुड्स को क्या करें। नो डाउट कि हमारे पास 125 करोड़ की आबादी है, भारत के पास एक बहुत वास्ट मार्केट है, हमारे पास कंज्यूमर्स बहुत हैं, अपने ही कंज्यूमर्स बहुत हैं, लेकिन उसी से बात नहीं बनेगी, हमें उसे निर्यात भी करना पड़ेगा। और निर्यात करने के लिए फिर हमें मार्केट तलाश करना पड़ेगा, मार्केट में जब हम जाएंगे तो हमें कॉम्पीट भी करना पड़ेगा, दूसरे देशों का जो सामान वहां मार्केट में बिक रहा है उससे हमें प्रतियोगिता भी करनी पड़ेगी। और अभी चीन ने जो अपनी मुद्रा को डिवेल्युएट किया है उससे भारत के सामने यही संकट आया है। आपने देखा होगा कल परसों की न्यूज में ध्यान दिया होगा मैं, कि परसों की न्यूज में यह था कि भारत को अब इसके लिए कदम उठाने होंगे, क्योंकि अब चीन का माल भारत में आता चला जाएगा, उसके लिए तो निर्यात सस्ता हो जाएगा, उसका निर्यात बढ़ेगा, चीन का निर्यात बढ़ेगा मतलब हमारा आयात बढ़ेगा, चीन से हमारे बाजार जो है ना पट जाएंगे, और हम जो चीन को सामान भेज रहे थे वो सामान चीन के बाजार में जाएगा नहीं, तो मतलब ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा हमारा जो विदेशी व्यापार चीन के साथ है वो चीन के पक्ष में हो जाएगा। और हमारे मार्केट में जब चीन का सामान भर जाएगा तो हम जो सामान बनाएंगे उसको कौन खरीदेगा, हमारा अपना ही मार्केट नहीं खरीद रहा है तो भारत बाहर हम कैसे भेजेंगे, क्योंकि वहां तो चीन का सामान और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। इसीलिए परसों के न्यूज में आपने एक शब्द सुना होगा कि सरकार चीन के माल की डंपिंग को रोकने के लिए कोशिश करेगी। माल की डंपिंग को रोकने का मतलब है कि चीन ऐसा नहीं कि साहब आप लो जितना सामान चाहिए लो और आपको जो बेचना है बेचो बेचो, हम भेज रहे हैं हम भेज रहे हैं, उसको कहते हैं डंप करना, मतलब बिल्कुल एक ढेर लगा देना। तो सरकार कोशिश करेगी जो भी उसके अपने मैकेनिज्म होंगे। तो मित्रों, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि ये सारी चीजें तीन चार जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए नहीं की जाती हैं। तो मित्रों, वो आर्टिकल है, आप पढ़िएगा, एक आप इंडियन एक्सप्रेस में भी मेक फॉर इंडिया का आर्टिकल है, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। करेंसी डिवेल्युएशन पर मैंने कहा था कि अब आर्टिकल्स आने शुरू होंगे, इंडियन एक्सप्रेस ने करेंसी डिवेल्युएशन पर आर्टिकल लिखा है, फिर बिजनेस स्टैंडर्ड ने तो चीन की चिंता पर ही एक आर्टिकल लिखा है, और फिर आप देखेंगे कि बिजनेस स्टैंडर्ड का ही एक आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा कि भारत सरकार के जो कानून है, जो नियम कानून है, वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी पड़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी के आसपास जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स फ्रेंड्स नॉलेज सेंटर में अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख लेंगे। दोस्तों, दूसरी खबर चीन के मुद्रा के बारे में थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। एक नेस्ले के बारे में खबर है कि उच्च न्यायालय ने उसे थोड़ी सी राहत, कोर्ट ने उसे राहत दी है। आपको दोस्तों मालूम है कि नेस्ले जो कंपनी है किस देश की कंपनी है, या भारत की है या विदेशी कंपनी है, अगर विदेश की है तो किस देश की है, ये आप केवल ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे लेकिन जानना चाहिए, सिविल सर्विस की तैयारी में थोड़ा सा हमें यही सतर्क रहना पड़ता है। सिविल सर्विस में तो हालांकि नहीं पूछा जाएगा कि किस देश की कंपनी है, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनमें पूछा जा सकता है कि किस देश की कंपनी। मुझे मालूम है कि 2 या 3 साल पहले जो एक उड़ीसा में जो एक पास्को कंपनी जो थी वो जब अपना वहां लगा रही थी, संयंत्र लगा रही थी, तो उसका फिर वहां के आदिवासियों ने बहुत विरोध किया, तो उस समय पूछा गया था कि ये जो पास्को जो है ये किस देश से रिलेटेड है, किस देश की कंपनी है। तो उसमें हो सकता है कि नेस्ले पर भी पूछ लिया जाए, तो आप सतर्क रहिएगा, आप देखिए कि किस देश की है, मुझे लिख करके मत भेजिएगा कि सर ये इस देश की है, बस आपकी जानकारी के लिए, तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मित्रों इतनी खबर थी, लेकिन आपको एक बता दूं कि जो नेस्ले में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, है ना, कि मैगी का क्या हुआ। मैगी को लेकर के तो स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे मिलावटी चीजें भारत के स्वास्थ्य का बिल्कुल बवाल, बिल्कुल बखेड़ा खड़ा कर दिया है, स्वास्थ्य को नष्ट कर रही हैं, हानि पहुंचा रही हैं, कौन कौन से तत्व ऐसे हैं, क्या किया जाना चाहिए, भारत ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं मिलावट को रोकने के लिए, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इस पर मैंने आप लोगों से पहले बात की थी। लेकिन नेस्ले को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि किस तरीके से सरकार ने इसको हैंडल किया और हैंडल करने के कारण कैसे एक विदेशी कंपनी एक तरीके से संकट में आई, क्योंकि इससे फिर जो विदेशी कंपनियां हैं उनका विश्वास फिर भारतीय नियम कानून कायदों में सरकार पर घटता है, जो फिर एफडीआई के लिए और मेक इन इंडिया के लिए एक एडवर्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है। क्योंकि ऐसे ही हुआ था 3 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, चिदम्बरम जी प्राइम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय 1-2 कंपनियों पर बैक डेट से टैक्स लगा दिया गया था, तो उसका इतना जबरदस्त दुष्प्रभाव हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था पर कि विदेशी कंपनियां अपने को विड्रॉ करने लगी कि भैया यहां तो बैक डेट से भी टैक्स लग सकता है, तो इसका एक एडवर्स इंपैक्ट होता है। तो नेस्ले के साथ जो कुछ भी हुआ है क्या इसका कोई एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है, हमें यह देखना होगा। और आप देखेंगे कि इस पर भी धीरे धीरे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो मित्रों ये न्यूज के बारे में थी। न्यूज़पेपर्स के बारे में भी इसी दौर में मैं चर्चा कर चुका हूं। एक स्पेशली एक आर्टिकल के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। प्रीतिश नांदी जी का आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, आप लोगों को प्रोवाइड भी किया गया, इसे आप जरूर पढ़िएगा। और मित्रों आपको पिछली बार भी ध्यान होगा मैंने कहा था कि प्रीतिश नांदी जी के आर्टिकल को आप केवल इस नजरिए से पढ़ने की कोशिश, उसमें आपको कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, उसमें आप इस नजरिए से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। आप देखेंगे कि भारतीय होने के बारे में उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने उसको आर्टिकल को लिखा है। भाषा का रिदम आप देखेंगे, खुद को शामिल करते हुए देखेंगे, और फिर कैसे उसमें से भारतीयता की परिभाषा निकल कर आती है कि व्हाट इज इंडियननेस, वो उसकी खूबसूरती होती है। तो भाषा पर भी आप लोगों को काम करना है, अपनी भाषा को बेहतर बनाना है, ये भी एक जिम्मेदारी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की होती है। तो प्रीतिश नांदी जी का लेख डेफिनेटली उसमें आपकी मदद करेगा, आप उसी नजरिए से उसे पढ़ें। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही, अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। तो मित्रों सबसे पहले मेरे पास मेल है राम सोनी का जो ग्वालियर से हैं और जो अभी अक्टूबर के बैच में यहां एकेडमी में आ रहे हैं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो जो उस एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाम है उनका राम सोनी, उनका मोबाइल नंबर है 9754412676। तो मित्रों बहुत से मेल हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन गर्ग ने भी ग्वालियर से, आप भी ग्वालियर से हैं, पूछा है कि हिंदी मेरा मीडियम है लेकिन क्या मुझे इंग्लिश के क्लिपिंग्स भी पढ़ने चाहिए। अब डेफिनेटली गुंजन पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि आपको जनरल इंग्लिश का पेपर भी क्वालिफाई करना है, जब आप सर्विस में आएंगी तो इंग्लिश की जरूरत होती ही है, और वैसे भी अपनी भाषा के साथ साथ इंग्लिश को जानना आपकी मदद भी करेगा, आगे पढ़ना ही चाहिए, उसे आप बिल्कुल किनारे न कर दें। तो दोस्तों अब कुछ मैं मित्रों के नाम ले रहा हूं और जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कुछ दोस्तों के नाम हैं, विनय कुमार पांडे इलाहाबाद से, अविनाश राज, अजय पांचाल न्यू दिल्ली से, रजिया, पूजा चतुर्वेदी भोपाल से, विनोद गिरवाल इंदौर से, उज्ज्वल सिंह अररिया बिहार से, अविनेश किशन गुवाहाटी से, मोनिका चौहान मुरादाबाद से, रंजीव कुमार सिंह, रितु अग्रवाल मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से, रजनीश सिंह अंबिकेश विशाखापट्टनम से, जितेंद्र कुमार शाह देहरादून से, नेहा बरेली से, प्रियंका रावत गाजियाबाद से, हरिगोविंद चौहान, जीवराज सिंह जयपुर से, और प्रशांत मावानी राजकोट से, आप सबका आभार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों अब इसी के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए 2 दिन के लिए विदा लेना चाहूंगा। सोमवार को नए उत्साह, नए जोश और खरोश के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, फिर ढेर सारी बात होंगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।